ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड का कथन। प्रतिनिधि सभा बैठक में विनियोजन विधेयक 2081 के ऊपर का विचार विमर्श जारी। विश्व बैंक अंतर्गत की अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की पूर्ण बैठक काठमांडू में शुरू। 61 देशों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों की है सहभागिता। और दक्षिणी इटली के तटों के पास दो जहाज डूबने से 11 लोगों की मौत और 60 से अधिक लोग लापता। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा में आज विनियोजन विधेयक अंतर्गत गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रीय योजना आयोग, राष्ट्रपति कार्यालय और उपराष्ट्रपति कार्यालय से संबंधित विषयों में बहस हुई। बहस में सांसदों ने देश में बढ़ते गए भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए इसके न्यूनीकरण के लिए प्रभावकारी योजना बनाने और नीतिगत भ्रष्टाचार को रोकने जैसे मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष तालीम की व्यवस्था करने, जोखिम वाली बस्तियों को समय रहते सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित करने लगात के लिए गृह मंत्रालय द्वारा विशेष योजना लाए जाने की बात पर सांसदों ने जोर दिया। इसके अलावा सांसदों ने विभिन्न सुधारों के संबंध में राय देते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वार्ड के प्रतिनिधियों के द्वारा वृद्ध वृद्धाओं को के दरवाजों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए और विकलांगों, अशक्तों और वृद्ध वृद्धाओं के लिए राष्ट्रीय परिचय पत्र बनाने के काम को सहज बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा भी कई अन्य मुद्दे सांसदों द्वारा उठाए गए, जिसमें विदेश भ्रमण के खर्च में कटौती, रूसी सेना में मौजूद नेपालियों को वापस लाने, खाड़ी देशों में रही नेपाली महिला कामगारों की अवस्था अध्ययन और उनकी सुरक्षा पर ध्यान देने, कृषि विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय के कामों को प्रभावकारी बनाने जैसे मुद्दे शामिल थे। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में संरक्षण मुद्रण संबंधी विधेयक 2077 के संबंध में प्रतिनिधि सभा से हुए संशोधन में सहमति के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। बैठक में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। इससे पूर्व राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सांसदों ने 112 अस्पतालों में दात्री राष्ट्रों द्वारा दी गई वेंटिलेटर, डायलिसिस लगायत मशीन को प्रयोगविहीन बनाकर रखे होने पर सवाल उठाए। उन्होंने वीर अस्पताल और पाटन अस्पताल में भी मरीजों के साथ खिलवाड़ होने के जिक्र के साथ सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा कई अन्य विषयों पर भी सांसदों ने सरकार का ध्यान आकर्षण कराया था, जिसमें भूकंप पीड़ितों के लिए राहत की समुचित व्यवस्था करने, संहिता के मर्म अनुसार तीनों तहों के अपने क्षेत्राधिकार में काम करने जैसी बातें शामिल है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने विश्वव्यापी शांति और साझा समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक क्रांति के दौरान पीछे पड़े देशों के विकास में दिखी चुनौतियों को संबोधित करने का आग्रह किया है। आज से काठमांडू में शुरू हुए विश्व बैंक अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडा की बैठक आईडा 21 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास में चुनौतियां झेल रहे देशों को सहूलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग कर विकास की गति की ओर आगे बढ़ाने की जरूरत है। बैठक में विश्व बैंक के वरिष्ठ प्रबंध निर्देशक टोर्स्ट सेमवर्ग लगायत उच्च पदाधिकारी सहित 61 देशों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों की सहभागिता थी। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा है कि देश की वस्तुगत जरूरतों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है। आज काठमांडू में चिकित्सा शिक्षा आयोग की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने आयोग द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र की गुणवत्ता में सुधार, विकास, विस्तार और नियमन में प्रभावी भूमिका निभाने की बात पर जोर दिया। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं और चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए सरकार वालों को ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच बनाए रखने के लिए सरकार के सभी तीन तहों, विशेष शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षिक संस्था और स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी सरकार वालों को सहकार्य करने की आवश्यकता है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। उप प्रधान एवं परराष्ट्र मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा कि चीनी शैक्षिक मेले से नेपाल और चीन के विश्वविद्यालयों के बीच संबंध में विस्तार होगा, जिससे शिक्षा के स्तर वृद्धि में सहयोग मिलेगा। चीनी राजदूतावास और चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल द्वारा आज काठमांडू में आयोजित चीनी शैक्षिक मेले का उद्घाटन करते हुए उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ ने यह बात कही। इस अवसर पर नेपाल के लिए चीनी राजदूत चेन सोंग ने कहा कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और शैक्षिक सहयोग चीन नेपाल के बीच के संबंध का महत्वपूर्ण आधारशिला है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री सुमना श्रेष्ठ ने कहा है कि वो शिक्षा क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त करने की प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मंत्रालय का कार्यभार संभालने के 100वें दिन के मौके पर आज मंत्रालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री श्रेष्ठ ने राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण शिक्षा क्षेत्र में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने का जिक्र करते हुए कहा कि वो इसे व्यवस्थित ढंग से समाप्त करने के लिए काम कर रही है। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री भगवती चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। आज से जनकपुर धाम में राष्ट्रीय बाल अधिकार परिषद परियोजना द्वारा शुरू हुए बाल खोज एवं बचाव सेवा 104 के संचालित एवं बाल संरक्षण घटना प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंत्री चौधरी ने कहा कि सभी के सहयोग से बच्चों को खतरे से बचाना जरूरी है। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के अध्यक्ष नारायण मान बेजुक्षे ने कहा है कि देश के प्रत्येक नागरिक को राजनीति और संहिता के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। आज भक्तपुर में लॉ स्टडी सोसाइटी द्वारा आयोजित संहिता क्रियान्वयन की चुनौतियां और व्यवहार्यता विषय पर कार्यक्रम में अध्यक्ष बेजुक्षे ने सभी नागरिकों को तीनों तहों पर राजनीति और संहिता के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता बताई। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देववा ने मोरंग के ग्राम थान गांव पालिका के अध्यक्ष जयप्रकाश गच्छीदार के निधन पर दुख व्यक्त किया है। आज कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल ने सभापति देववा की ओर से शोक विज्ञप्ति जारी कर 56 वर्षीय गच्छीदार का कल हुए निधन पर दुख व्यक्त किया। मौसम प्रतिकूल होने के कारण सोलुखुम्बु स्थित तेनजिंग हिलारी विमानस्थल लुकला में हवाई उड़ान बंद होने से पर्यटकों को समस्या झेलनी पड़ रही है। बता दें कि बीते 26 गते से विमानस्थल से किसी भी जहाज ने उड़ान नहीं भरी थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिणी इटली के तटों के पास दो जहाज दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें डूबने से 11 लोगों की मौत हो गई है और 60 से अधिक लोग लापता हैं। जर्मनी की चैरिटी संस्था रेस्क्यू सिप का कहना है कि सोमवार को लैम्पेदूसा आयरलैंड पर उन्होंने 51 लोगों को डूबने से बचाया। साथ ही एक लड़की की नाव भी लकड़ी की नाव भी निकल गई और डेक के निचले हिस्से में 10 शव भी उन्हें मिले। मेडिकल राहत मुहैया करवाने वाली स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर का कहना है कि ऐसा ही एक और घटना में 60 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें 26 बच्चों के होने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों का कहना है कि ये नाव लीबिया और टर्की के प्रवासियों को लेकर निकली थी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड का कथन। प्रतिनिधि सभा बैठक में विनियोजन विधेयक 2081 के ऊपर का विचार विमर्श जारी। विश्व बैंक अंतर्गत की अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की पूर्ण बैठक काठमांडू में शुरू। 61 देशों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों की है सहभागिता। और दक्षिणी इटली के तटों के पास दो जहाज डूबने से 11 लोगों की मौत और 60 से ज्यादा लोग लापता। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।